मेरे प्यारे साथियों नमस्कार फ्रेंड्स, मुख्य विषय के तहत मैं आज सबसे सीसेट के बारे में ही कुछ और बातें करना चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे मेल्स मुझे इसी से संबंधित मिले हैं। लेकिन इससे पहले जो एक दो छोटी छोटी बातें हैं, मुझे लगता है कि अभी रख देनी चाहिए। आपने रेडियो न्यूज में यह बात सुनी होगी कि हमारे प्रधानमंत्री जी 3 देशों की यात्रा के लिए रवाना हो रहे हैं, हो भी गए होंगे जब तक आप मुझे सुनेंगे तब तक। ये 3 देश हैं, जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया। यदि आप 1 साल से सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, 1 साल, तो मुझे लगता है कि यहां अब आपको अपनी तैयारी का मूल्यांकन इस आधार पर करना चाहिए कि जो प्राइम मिनिस्टर की यात्रा है आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। 3 देशों की यात्राएं हैं, तो इन 3 देशों में किन देशों की यात्राएं इंपॉर्टेंट है, या किसी भी देश की यात्रा इंपॉर्टेंट नहीं है, और अगर इम्पॉर्टेंट है तो क्यों इम्पॉर्टेंट है, मैं अपनी तरफ से बताने नहीं जा रहा हूं। अभी ही आपको इसके बारे में विचार करना चाहिए, क्योंकि जब अखबारों में बातें आएंगी, छपेंगी, आप पढ़ेंगे, तब तो आपके लिए अनुमान लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगा, लेकिन अभी आपको ये काम करना चाहिए। दूसरी खबर जो आपने अखबारों में पढ़ी होगी वो ये है कि जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर थे, जो लॉ मिनिस्टर थे, किरेन रिजिजू, उन्हें उनके पद से हटा दिया गया है, उनसे यह मंत्रालय वापस ले लिया गया है, आप क्यों कह लीजिए, और उन्हें दूसरा मंत्रालय दे दिया गया है। चलिए, दूसरा मंत्रालय कौन सा दिया गया वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, और सच पूछे तो हमारे लिए यहां यह भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि किसे नया कानून मंत्री बनाया गया, विधि मंत्री बनाया गया, यह भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट यह है कि किरेन रिजिजू, नाम थोड़ा सा सावधानी से लेना होगा क्योंकि बहुत कॉमन सरनेम नहीं लग रहा है। हमारे लिए केवल इम्पोर्टेंट यह है कि किरेन रिजिजू से यह मंत्रालय ले लिया गया है। ऐसा क्यों हुआ? सामान्य तौर पर तो देखिए, किसी भी मंत्री को हटाना, किसी भी नए को मंत्री बनाना, ये बिल्कुल प्रधानमंत्री के अधिकार क्षेत्र की बात है, और ये बातें होती भी रहती हैं। इसी दौर में एक और भी मंत्रालय में परिवर्तन किया गया है, लेकिन हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे हैं। सच बात यह कि मैं इतनी बात क्यों कर रहा हूं, उसके पीछे बहुत सिंपल सा रीजन है, और रीजन यह है कि आपको मालूम होना चाहिए कि जो घटनाएं घट रही हैं या जो घटती हैं उन्हें आपको लेना किस तरीके से है। सीधे सीधे वो आपको बेकार की घटनाएं दिखाई देंगी, छोटी सी घटना दिखाई देगी, लेकिन हो सकता है कि खासकर संविधान को समझने में, उससे भी बड़ी बात है कि राजव्यवस्था को समझने में ये आपकी मदद करे घटना, इसलिए मैं इस पर बात कर रहा हूं। पिछले कुछ समय से आपने महसूस किया होगा कि जो हमारे कानून मंत्री थे वो लगातार सुप्रीम कोर्ट को लेकर, सुप्रीम कोर्ट न भी कहें तो खासकर न्यायालयों को लेकर, न्यायाधीशों को लेकर के थोड़े से विवादास्पद किस्म के वक्तव्य दे रहे थे। अगर हम विवादास्पद न भी कहें तो कह सकते हैं कि थोड़े से कड़े किस्म के वक्तव्य दे रहे थे। जैसे एक वक्तव्य उन्होंने यही दिया कि जो जजों की जो नियुक्ति है अभी जो होती है कॉलेजियम के जरिए होता है, आप जानते हैं, वो संविधान प्रक्रिया के तहत नहीं है, वो संविधान से परे, उन्होंने ये बात कह दी। उनके बातों से साफ ये लगता था कि जो कॉलेजियम सिस्टम है हमारे सुप्रीम कोर्ट का, उनसे वो खुश नहीं है, और लगातार वो वक्तव्य देने में चूक नहीं रहे थे। यहां तक कि उन्होंने एक बहुत विवादास्पद वक्तव्य दे दिया था, और जिसके विरोध में बकायदे कुछ वकीलों ने बयान जारी किया उनके विरुद्ध, और वो ये था कि कुछ जो रिटायर्ड न्यायाधीश हैं वो एंटी इंडिया ग्रुप का हिस्सा बन गए हैं, यानी कि जो देश का विरोध कर रहे हैं उसका हिस्सा बन गए हैं। तो ये तो बहुत बड़ी बात है, और इसको लेकर के बकायदे वकीलों ने यह बात कही थी कि अगर रिटायर्ड जज के बारे में यह बात कही जा रही है, इसका मतलब है कि मंत्री लोगों को डरा धमका रहे हैं, जो आम नागरिक हैं, और उनको यह बता रहे हैं कि सरकार की अगर आपने आलोचना की तो यह सही नहीं होगी। तो इस तरह के जो विवादास्पद वक्तव्य थे, देखिए, कहीं ना कहीं सरकार की छवि को खराब कर रहे थे। जब हम सरकार की छवि को खराब करने की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में केवल भारत आता है कि भारत में सरकार की छवि खराब हो रही है। दोस्तों, खासकर इस तरह की जो बातें होती हैं वो वैश्विक स्तर पर होती हैं। हमारे यहां सभी देशों के एम्बेसडर्स रहते हैं, ऑलमोस्ट हाई कमिश्नर्स रहते हैं। आपको क्या लगता है कि ये सूचनाएं उन देशों तक नहीं पहुंचती हैं? बिल्कुल पहुंचती हैं, इसीलिए तो हाई कमिश्नर और एम्बेसडर्स रखे जाते हैं। और इससे निष्कर्ष ये निकल रहा है कि जो हमारे यहां की जो विधायिका है और जो न्यायपालिका है, इनके बीच में जबरदस्त किस्म का तनाव है। अब सोच करके देखिए कि दुनिया के जो दूसरे देश हैं उनमें अगर इस तरह का संदेश जा रहा है तो आप इसे क्या कहेंगे? यही लगेगा कि जो सरकार है वो तानाशाह है, सरकार न्यायपालिका की चिंता नहीं करती है, वो लोगों के अधिकारों का अतिक्रमण कर रही है, अभिव्यक्ति की बिल्कुल आजादी देने के पक्ष में नहीं है, वो न्यायपालिका को भी अपने अधिकार क्षेत्र में लेना चाह रही है। इसराइल की घटना के बारे में मैंने आपको बताया था कि कैसे वहां भी सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों को कम करने की कोशिश की गई और कैसे उसके खिलाफ पूरी जनता खड़ी हो गई, अंततः वापस लेना पड़ा वो प्रस्ताव, वो कानून। तो इस तरह की खबरें जब विदेश में जाती हैं तो डेफिनेटली देश की छवि खराब होती है, इन्वेस्टमेंट पर प्रभाव पड़ता है। कि सीधी सी बात है कि अगर बाहर का कोई व्यक्ति यहां आ रहा है, निवेश कर रहा है, इंडस्ट्री खोल रहा है, तो जो भरोसा कर सकता है वो रेगुलेटरी अथॉरिटी पर कर सकता है, जुडिशरी पर कर सकता है। लेकिन यदि उसे यह लगे कि नहीं, जुडिशरी और जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो भी हमारे काम की नहीं है, सरकार जो चाहेगी वही होगा, तो डेफिनेटली वो पीछे हट जाएंगे। तो खासकर मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपके दिमाग में उस तरह के एंगल्स आ सके विचार करने के। तो महत्वपूर्ण, खासकर जो हमारे कानून मंत्री थे उनका हटाया जाना सिविल सर्विस परीक्षा की दृष्टि से ये इम्पॉर्टेंट है। कौन नए मंत्री बनाए गए, क्यों हटाए गए, इन सब पर प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो एक एंगल मैंने इसके माध्यम से आपको देने की कोशिश की है। दोस्तों आइए अब थोड़ी सी नजर मार लेते हैं सी सेट की तैयारी को लेकर के। कुछ स्टूडेंट्स ने बहुत रिक्वेस्ट के साथ मुझसे कहा है कि सर उसमें जो शब्द होते हैं ये बताइए, इन्फर क्या होता है और अनुगत क्या होता है, पूर्व धारणा उपनिगमन क्या है, तो जरा सा प्लीज इसके बारे में कुछ हम लोगों को बता दें। हालांकि देखिए इसके बारे में जो मैं बता रहा हूं बताया इसलिए नहीं जाना चाहिए क्योंकि अब तो तैयारी हो चुकी है और मुझे लगता है कि जो भी परीक्षा में बैठ रहा हो ये तो बहुत ही बेसिक तैयारी है, खासकर अगर आप सी सेट के पेपर को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो। लेकिन फिर भी चूंकि बात कही गई है, पूछी गई है, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपनी बात रखनी चाहिए, रिविजन के रूप में ही सही, इसी बहाने आपका रिवीजन हो जाएगा। तो जो थोड़ा सा वक्त बचा हुआ है आइए उसमें थोड़े से जो इस तरह के शब्द होते हैं उन्हें देख लेते हैं। एक शब्द आता है अनुगत, हिंदी में होता है अनुगत, इंग्लिश में होता है इन्फर। इन्फर, इन्फर क्या है? देखिए इन्फर, खासकर मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, बोधगम्यता की चुनौती को आप समझिए, मैं बहुत ही सरल शब्दों में आपको बता रहा हूं। एक गजल की लाइन है, इसे आप ध्यान से सुनिए। लाइन यह है, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, बस एक बार मुलाकात का मौका दे दे। राइट, मैं लाइन रिपीट कर रहा हूं। इसमें आप बोधगम्यता की चुनौती को शायद आत्मसात कर पाएंगे, समझ पाएंगे, छोटा शब्द है, आत्मसात कर पाएंगे। मैंने क्या कहा, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, बस एक बार मुलाकात का मौका दे दे। ये दो लाइनें हैं, मैं ये दो लाइनें ऊपर लिखता हूं और आपसे नीचे ये पूछता हूं प्रश्न, ही चलिए हम विकल्प पर नहीं जाते, कि ये जिससे मुलाकात का अवसर मांग रहा है या जिसके शहर में आने की बात कर रहा है, हम तेरे शहर में, तो ये तेरे कौन है, किसके शहर की बात कर रहा है, हम कौन है जो कह रहा है कि हम तेरे शहर में आए हैं, मुलाकात का मौका ये क्यों मांग रहा है। इस तरह के प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की कोशिश कीजिए। वहां नहीं कहा गया है कि कौन कह रहा है, किससे कह रहा है, क्यों कह रहा है, कुछ नहीं बताया गया, बस वहां कह दिया गया है। लेकिन अगर आप थोड़ी भी समझ रखते हैं गजलों की, शायरी की, हिंदी भाषा की, तो मेरे ये प्रश्न बिल्कुल उटपटांग से नहीं लग रहे होंगे। कौन है जो ये कह रहा है कि हम तेरे शहर में आए हैं, कौन है कहने वाला, फिर तेरे शहर में किससे कह रहा है, क्यों कह रहा है, क्या इनके पहले भी कोई पहचान रही है, जो पहले अगर इनकी पहचान रही है तो किस तरह की पहचान रही है, इस तरह के ढेर सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इसमें मिल जाएंगे। लेकिन कैसे मिलेंगे, इस रूप में मिलेंगे कि उसमें कहा क्या जा रहा है, इन्फर क्या हो रहा है, सीधे सीधे बात नहीं कही जा रही है लेकिन अर्थ निकाले जा सकते हैं, उसे एक महसूस होता है। अलग अलग शब्दों के माध्यम से बस आपको इन्हीं को पकड़ने की कोशिश करनी है। तो इन्फर, सीधे सीधे सूचना नहीं दी गई है लेकिन वहां कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं कि उन सिचुएशंस के आधार पर आप ये बता सकते हैं कि कुछ ऐसा होगा। जैसे मैं खासकर हमारे जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उसमें एक उदाहरण देता हूं कि एक व्यक्ति है जो हाथ सूट बूट पहने हुए, हाथ में ब्रीफ केस है उसके, और हवाई जहाज में बैठने के लिए वो एयरपोर्ट पर है और थोड़ी सी घबराहट सी भी है उसमें, जल्दबाजी में इधर से पैतरे बदल रहा है, उधर से पैतरे बदल रहा है, उधर से पैतरे बदल रहा है। तो अब इसको देख करके आप क्या अनुमान लगाएंगे कि ये व्यक्ति कौन हो सकता है? बस उसके माथे पर नहीं लिखा हुआ है, उसने अपने पॉकेट पर भी कोई ऐसा टैग नहीं लगा रखा है, उसे देख करके आप क्या अनुमान लगाएंगे? या और भी सरल शब्दों में कहें कि जिसने अपने गले में स्टेथोस्कोप लटका रखा हो, सफेद ड्रेस पहन रखी कोट जैसा, या काले रंग का कोट पहन रखा हो, स्टेथोस्कोप नहीं लटका रखा हो, हाथ में कुछ मोटी मोटी किताबें ले रखी हो, उसे देखकर आप क्या अनुमान लगाएंगे? तो सीधी सी बात है कि जिसने सफेद ड्रेस स्टेथोस्कोप लटका रखा है वो डॉक्टर होगा, जिसने काला कोट हर हाथ में किताबें थाम रखी हो वो वकील होगा, और ये जो ब्रीफ केस लिए हुए या तो एग्जीक्यूटिव होगा या बिजनेसमैन होगा। तो ये इन्फर हो गया, अनुगत हो गया, अनुमान लगाया, लेकिन अनुमान हवा में नहीं लगाया। वहां जो सिचुएशन बताई गई है उन सिचुएशंस के आधार पर यह सोचा गया कि फलानी बात हो सकती है, राइट? फिर एजम्पशन, पूर्व धारणा के बारे में आप जानते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि अरे राजनीति तो यार बहुत बुरी चीज है, राजनीति तो होती ही ऐसी है। कोई मान लीजिए कि राजनीति में है तो उसको लेकर के हम यही धारणा बना लेंगे कि यार ये राजनीति तो होती है, सो हमने धारणा बना ली ना। अब राजनीति में सारे तो बुरे नहीं होते और राजनीति एकदम बुरी भी नहीं होती। सामान्य तौर पर हम कह देते ना भैया लोगों को नहीं बदला जा सकता, तो फिर क्यों पढ़ाई लिखाई की जा रही है, क्यों इतने उपदेश हो रहे हैं, क्यों मोटिवेशनल लेक्चर्स हो रहे हैं। तो हमने पहले से धारणा बना ली है और ये अर्थहीन धारणा नहीं है, काफी कुछ सीमा तक सही भी है लेकिन पूरी तरह सही भी नहीं है। तो इसे हम कहते हैं एजम्पशन। दो शब्दों के बारे में मैंने अभी आपको बताया दोस्तों, अभी बहुत सारे शब्द हैं, समय नहीं रह गए हैं। यदि आप लोग ऐसा महसूस करते हैं कि नहीं और भी बताए जाने चाहिए तो आप मुझे लिखें, मैं जो शेष शब्द हैं उनके बारे में भी आपको कुछ अपने ढंग से बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। हम लोग की जो ऑफलाइन क्लासेज हैं 26 अक्टूबर से 9 नवंबर के बीच होने वाली हैं। इसके लिए गोरखपुर उत्तर प्रदेश के सुधीर कुमार मौर्य हैं जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। तो सुधीर जी, एकेडमी की पूरी टीम की ओर से मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं। और इन्हीं में कुछ दोस्तों के नाम हैं, राकेश कुमार राजभर गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, अमृत नारायण सतपति ओडिशा से, देवी दत्त हरियाणा से और अनामिका विमल प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ ही दोस्तों आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। दो दिनों के बाद आप सबसे फिर मुलाकात होगी, तब और बातें करेंगे। इजाजत दें, नमस्कार।